मुख्य समाचारों में, विक्टोरिया में पूरी तरह से टीकाकरण वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए संगरोध समाप्त। क्वांटास अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करेगा और भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 विरोधी टीकाकरण अभियान को बताया चिंता से आश्वासन की ओर यात्रा। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूस का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि क्रिसमस तक राज्य में बहुत कम स्वास्थ्य और सुरक्षा नियम या प्रतिबंध रहेंगे। उनका कहना है कि उनकी सरकार की स्वास्थ्य टीम शीघ्र ही बूस्टर शॉट टीकाकरण कार्यक्रम की ओर ध्यान लगाएगी। मेलबर्न एक लंबे कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री एंड्रूज ने सुझाव दिया कि यदि टीके के लक्ष्य पूरे होते रहे तो प्रतिबंधों में जल्द ही और ढील दी जा सकती है।
90.5% of Victorians have now had a first dose. And 71.1% of Victorians aged over 16 are fully protected. That's why today we can end the lockdown. That's why today we can begin really meaningful steps to open up our city and state. We believe that next weekend, so not tomorrow, but the weekend after, we believe that we will reach the 80% double dose mark. And if we can go further, then of course we will make announcements to that effect.
मेलबर्न को दुनिया का सबसे लॉकडाउन शहर माना जाता है, जो मार्च 2020 से घर पर रहने के आदेश के तहत 260 दिनों से अधिक समय तक बंद रहा। नवीनतम लॉकडाउन राज्य का छठा 77 दिनों के लिए रहा। विक्टोरिया में विदेशों से आने वाले वो यात्री जिन्हें पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है उनके लिए संगरोध खत्म हो रहा है और इस तरह से राज्य की सेटिंग न्यू साउथ वेल्स के अनुरूप हो गई है। यात्रियों को अब घर पर या होटलों में क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है और उन्हें उड़ान से पहले और आगमन के 24 घंटे बाद कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण करना होगा। ये बदलाव 1 नवंबर से प्रभावी होगा। इसके अलावा लगभग 250 बिना टीकाकरण वाले लोग भी हर हफ्ते घर वापस लौट सकेंगे, लेकिन उन्हें 14 दिनों के लिए एक होटल में संगरोध करना होगा। विक्टोरिया ने 77,000 परीक्षणों में से 2,199 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। राज्य के दैनिक कोविड-19 आंकड़ों में अब अस्पताल में भर्ती होने के आंकड़े भी दिखाई जाएंगे। पूरे राज्य में अस्पताल में 784 लोग हैं, जिनमें 145 गहन देखभाल में हैं, जिनमें से 94 वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 16 मौतें भी दर्ज की, जो कि राज्य की तीसरी लहर की उच्चतम दैनिक संख्या है। इससे वर्तमान प्रकोप का आंकड़ा 203 तक पहुंच गया है। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर ब्रेट सटन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों में ढील के साथ कोविड-19 बढ़ेगा।
But as we start to reopen, there will be more COVID in the community really than at any other point in time. Many of those people will have mild illness because they're fully vaccinated. Many of those settings will have fully vaccinated people. But recognizing that children will also be in those places and some exempt individuals will be in those places, and that getting vaccinated doesn't mean that you're absolutely guaranteed not to get the virus. You can get mild illness and you can pass it on. So we have to bear in mind those other really important protections.
ऑस्ट्रेलियन नागरिकों के प्रवासी माता पिता और स्थायी निवासी अब 1 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में छूट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। फेडरल सरकार ने पिछले हफ्ते माता पिता को परिवार की परिभाषा में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वो यात्रा छूट के लिए पात्र हो गए हैं। गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रूस का कहना है कि पात्र यात्री अब उन आवेदनों को गृह विभाग के ट्रैवल एग्जेम्पशन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्वांटास ने घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलिया मार्च 2020 के बाद पहली बार अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। एयरलाइन का कहना है कि वो 1 नवंबर से फिर से खुलने वाली सीमा और न्यू साउथ वेल्स द्वारा टीकाकरण किए गए यात्रियों के लिए संगरोध आवश्यकताओं को समाप्त करने के निर्णय का अनुसरण करती है। क्वांटस का कहना है कि बदलाव का मतलब होगा कि 11,000 स्टैंड डाउन कर्मचारियों को वापस नौकरियों पर लिया जाएगा। क्वांटस के अध्यक्ष एलन जॉयस ने इसे कंपनी के लिए 2 साल में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर बताया।
This 20 months is probably the darkest period in Qantas's 100-year history. It's meant that we've had to ground aircraft, stand down people and restructure the business. But there is light at the end of the tunnel. It's very clear that because Australians have rolled up their sleeves and taking the jab, we can see that light.
और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो अगले सप्ताह की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर के बीच एक यात्रा बबल स्थापित करने के बारे में सिंगापुर के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए नेशनल्स के समझौतों को हासिल करने की कगार पर हैं। हालांकि ये समझौता शर्तों के बाद आता है जिसमें देश के कृषि और खनन क्षेत्रों के लिए चल रहे समर्थन शामिल हैं।
The cabinet will consider this matter next week before I head off to Glasgow and we'll work through that and determine what will take forward to cabinet next week. A decision will be taken by cabinet and I'll be in a position to announce that later in the week.
Nationals की चिंताओं का मूल कारण ये है कि उत्सर्जन में गहरी कटौती ग्रामीण और क्षेत्रीय नौकरियों और उद्योग विशेष रूप से खनन और खेती के लिए क्या करेगी। वार्ता पर एक अद्यतन के लिए पार्टी रविवार दोपहर को फिर से बैठक करेगी। गठबंधन को विश्वास है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में श्री मॉरिसन के G20 और जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले एक समझौता किया जा सकता है। ग्रीन्स नेता एडम ब्रेंट फेडरल वार्ताओं के गतिरोध पर काफी मुखर थे।
The Liberals and Nationals will reach a deal on 2050, and I am sure it will be a fraud because it's based on expanding coal and gas. Now, the charade continues up here in Canberra as Scott Morrison and Barnaby Joyce pretend to negotiate with each other, but what they have in common and what they've already locked in is that they want more coal and gas and they won't cut pollution before 2030 when it matters.
New South Wales ke Deputy Liberal Neta स्टुअर्ट आयर्स ने भ्रष्टाचार की जांच में कहा है कि वो वागा वागा के शूटिंग क्लब द्वारा एक फंडिंग आवेदन में योग्यता देख सके थे। 5.5 मिलियन डॉलर की ये ग्रांट भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग द्वारा जांचे जा रहे उन दो में से एक है जो पूर्व सांसद डैरल मगवायर के मत क्षेत्र में दिया गया था। जब इस ग्रांट पर विचार किया जा रहा था उस समय स्टुअर्ट आयर्स राज्य के खेल मंत्री थे और पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरिजिक्लियन कोषाध्यक्ष थीं। सुश्री बेरिजिक्लियन के श्री मगवायर के साथ एक गुप्त व्यक्तिगत संबंध भी शामिल थे। कई गवाहों ने इस सप्ताह की सुनवाई में बताया कि शूटिंग क्लब के आवेदन के लिए प्रारंभिक व्यावसायिक मामले में योग्यता की कमी थी, लेकिन स्टुअर्ट आयर्स ने सुनवाई को बताया कि वो इससे असहमत हैं।
For a shooting facility, they were in a good location. They were in an industrial estate area. I think they had a good, from memory, they had a good relationship with their neighbour, which was good for both noise and safety. So from a regional shooting location perspective, they were a good, well-run organisation. And I was quite predisposed to the, particularly to the clubhouse concept.
उधर सुश्री बेरिजिक्लियन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और वो अगले सप्ताह ICAC के सामने पेश होंगी। भारत में COVID-19 विरोधी टीकों की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने के एक दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के COVID-19 विरोधी टीकाकरण अभियान को चिंता से आश्वासन की ओर की यात्रा के रूप में बताया और कहा कि इसने देश को मजबूत बनाया। उन्होंने अविश्वास और दहशत पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद टीकों पर लोगों के विश्वास को इस सफलता का श्रेय दिया। वैक्सीन पर विशेषज्ञों के समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड हासिल करने में भारत को करीब 9 महीने का समय लगा, लेकिन अगली 100 करोड़ डोज लगाने में सिर्फ एक तिहाई यानी 3 से 4 महीने का ही समय लगेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि साल के अंत तक देश में हर कोई कम से कम एक डोज लगवा चुका होगा और कुछ ही लोग ऐसे बचेंगे जिन्हें दूसरी डोज लगानी रह जाएगी। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के लगभग 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के बर्ताव से डेविड वार्नर का आत्मविश्वास टिका है, लेकिन ये सलामी बल्लेबाज बड़े मंच का खिलाड़ी है और T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की सफलता में उसकी भूमिका अहम रहेगी। सनराइजर्स ने इस साल IPL के पहले चरण में वार्नर को कप्तानी से हटा दिया था और UAE में सत्र बहाल होने पर उनके पहले दो मैचों में साधारण प्रदर्शन के बाद अंतिम 11 से भी बाहर कर दिया। ली को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला T20 विश्व खिताब जीतने में सफल रहेगा। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में बौछारें रहेंगी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। सिडनी में देर तक बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।